हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका इंजरी टाइम एक्स्ट्रा के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज तक आप इंजरी टाइम और इंजरी टाइम एक्स्ट्रा, जो हमारे दो पॉडकास्ट सीरीज है, इसे इंग्लिश में सुनते आए हो। पर आज का ये एपिसोड थोड़ा खास है, क्योंकि आज पहली बार हम ये एक एपिसोड हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसमें हमारा साथ बता रहे हैं भारतीय टीम और मुंबई सिटी FC के दिग्गज गोलकीपर अमरिंदर सिंह। तो भाई, रुके किसके लिए हो, जाओ और सुनो अमरिंदर की कहानी उनकी जुबानी। अमरिंदर, स्वागत है आपका इंजरी टाइम एक्स्ट्रा के इस एपिसोड में।
थैंक यू।
सीजन कैसा रहा है अब तक आपके हिसाब से?
जे वाला सीजन,
हाँ जी, ISL वाला सीजन,
आई थिंक अच्छा रहा था। अच्छा, टीम ने स्टार्ट किया था। अभी लास्ट में कुछ प्लेयर्स को इंजरी भी हुआ, अभी जो लास्ट मैचेस देखे आपने, लियो इंजर्ड था और दो तीन प्लेयर इंजर्ड थे, तो उसकी वजह से भी टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे गया है। और अभी भी आई थिंक कि अगर देखा जाए तो हम लोग आउट नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है वापस आने के लिए। तो अभी हम जितना भी हो सके अपना ट्राई करेंगे कि वापस आके अपना बेस्ट देने के लिए, आगे वाले जो चार गेम बचे हैं उनमें से हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें और जितना ज़्यादा हो सके कि हम लाइक टेबल के ऊपर जाएं।
हाँ जी, सीजन की शुरुआत में पहली मैच आपकी मुंबई बैंगलोर के विरुद्ध थी, जब आप बैंगलोर रहते तभी आपसे मिलना हुआ था मेरा। आपने ये कहा था कि ये सीजन तय करेगा कि आगे जाकर मुंबई की टीम कैसे बनेगी, क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट रहा है। तो आपके हिसाब से, उस नज़रिए से देखा गया तो टीम कैसे बनी है, एक कॉम्बिनेशन कैसा रहा है?
मुझे लग रहा है कि अच्छा था जो भी टीम ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में बैंगलोर के साथ इतना अच्छा नहीं खेला था, उसके बाद अपनी गेम को धीरे धीरे इम्प्रूव किया टीम ने, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। और बीच में मैंने पहले बोला कि कुछ प्लेयर्स को थोड़ा इंजरी होने की वजह से टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हुआ, और अभी फिर भी हमारे पास टाइम है वापस कोई आने के लिए कि
जी हाँ, पिछले बार टेबल टॉप किया था आप लोगों ने, आपका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इस साल आपका परफॉर्मेंस आपके हिसाब से कैसा रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह ये सीज़न गया है आपके, एक पर्सनल गोल के साथ?
हाँ, मैं खुश हूँ अपना। मैं हार्डवर्क करता हूँ डेली अपना, ट्रेनिंग में जो भी मैंने परफॉर्म किया मैं उससे खुश हूँ। तो बस मेरा ऑलवेज फोकस होता है कि मैं अपना ट्रेनिंग में अपना बेस्ट दूँ, मैचेस में जाके अपना बेस्ट दूँ पहले।
तो ये बात हुई इस बार की ISL के सीजन के बारे में। अगर थोड़ा हटकर आपके बारे में ज़रा बात करें, आप फुटबॉल आपने चालू कैसे किया, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल एक फेमस स्पोर्ट नहीं रहा है, स्पेशली जब आप उभर कर आ रहे थे, आप बच्चे थे तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते थे, तो आपका और फुटबॉल का ये रिश्ता कैसे चालू?
मेरे गाँव में कुछ एक मेरे गांव का टीम होता था फुटबॉल का, मुझे उसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता था। तो मेरे पास ऐसे ही एक फुटबॉल था घर पे, तो मैं उसके साथ खेलता।
आपके ऐसे तो ज़्यादा हॉकी भी होता है?
नहीं, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे फुटबॉल ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे फुटबॉल के साथ खेलते मैं भी छोटा था, ग्राउंड में जाने लग गया ऐसे ही, धीरे धीरे करके ऐसे फुटबॉल का दिमाग में आने लग गया कि फुटबॉल खेलना है। उसके बाद फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि फुटबॉल खेलने के लिए। फिर जब मैं 15-16 का था, तो मैंने खालसा स्कूल पालदी में एक अकेडमी में ट्रायल दिया एज ए स्ट्राइकर,
स्पोर्ट्स विंग अकेडमी
पालदी।
हाँ जी,
उसमें मैंने ट्रायल दिया एज ए स्ट्राइकर, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो 6-7 मंथ मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे।
हाँ जी।
और सीजन का लास्ट 2-3 महीने थे, और एक जादविंदर नाम का कोच था।
हाँ जी।
जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया गोलकीपिंग में, और सब जगह उसने मुझे हेल्प किया। तो उसने मुझे मेरी हाइट देख के बोला कि
चलो आप गोलकीपिंग करते हैं।
हाँ, आप अभी गोलकीपिंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि मुझे कहीं भी हो मुझे बस खेलना है, 11 में रहना है, चाहे मैं गोलकीपर हूँ, चाहे मैं डिफेंडर हूँ, चाहे स्ट्राइकर हूँ। मेरे दिमाग में यही बात थी कि मुझे बाहर नहीं बैठना है, मुझे गेम में रहना है, बस
90 मिनट खेलने हैं,
कहीं भी हो मुझे कहीं भी डालो।
जब आपके कोच ने आपको कहा कि स्ट्राइकर के रूप में आपने आपका ट्रायल दिया था एकेडमी में, सेलेक्ट भी आप एक स्ट्राइकर के रूप में होते हैं, जब आपके कोच ने आपसे आकर कहा कि चलो गोलकीपिंग ट्राई करते हैं, आपने कहा कि आपको बस खेलना था, पर थोड़ी सी झिझक थी आप में कि अगर यहाँ ठीक नहीं हुआ तो फिर बाहर बैठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गोलकीपर रिप्ले ज़्यादा होते नहीं है।
नहीं, लाइक उस टाइम पे इतना कुछ आदमी सोचता नहीं, जब छोटा होता है तो बस यही होता है कि बहुत मोटिवेट होता है कि बस खेलना है कहीं भी हो। कोच ने बोला कि गोलकीपर, तो गोलकीपर जाके मैंने गोलकीपिंग, फर्स्ट डे मुझे याद है कि मैंने पता नहीं कैसा गोल खाया था, और फर्स्ट जिस दिन उसने बोला, तो उस दिन अगर मैं सोचता तो कि मैं चांस ही नहीं था कि मैं गोलकीपर बन पाता।
हाँ जी।
तो ऐसे ही उसने मुझे फोर्स किया गोलकीपिंग के लिए, ट्रेनिंग बहुत करवाया उसने मुझे, तो आज मैं यहाँ पे हूँ।
उस कोच के कारण आज भारतीय टीम को एक अच्छी गोलकीपर मिल गई है।
जी।
ऐसी भी बात। उसके बाद BC Roy ट्रॉफी हुआ था, जब
बीसी जूनियर नेशनल्स अंडर 17 जहाँ आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था, जहाँ से पुणे एफसी ने आपको स्काउट किया था, आपको याद है उस दिन उस समय जब वो नेशनल्स के टूर्नामेंट हो रहा था, क्या आपको पता था कि स्काउट्स आए हुए हैं देखने को बच्चों को?
नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद मैं वापस घर भी गया, उसके बाद थोड़ा टाइम कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे कुछ भी। तो जब मैं वो खेल रहा था, मैं अपना फोकस में था कि मैं वो गेम सबने जीती थी, आई थिंक फर्स्ट थे उस गेम में। तो वो गेम जीतने के बाद जब मैं घर पे गया, तो उसके बाद मुझे एक अली हसन नाम का कोच था,
हाँ जी,
तो उन्होंने मुझे बताया था कि पुणे में ट्रायल्स हैं अंडर 19 के। तो मैं अंडर 19 के ट्रायल्स देने के लिए गया, वहाँ पे रंजन चौधरी सर थे, तो वहाँ पे मैं अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 मंथ वापस आना है ट्रेनिंग के लिए, साइन वगैरह 2 साल के हो गए थे मेरे, तो उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 मंथ वापस आना है आपको ट्रायल देने के लिए, सॉरी सीजन स्टार्ट होना है।
हाँ जी।
तो जिस दिन मैं ऐसे ट्रेन से मॉर्निंग 11 o'clock उतरा ट्रेन से, मैं आके टायर्ड था, सो रहा था, और एक कोई क्लब का आदमी, फर्स्ट डे एक क्लब का आदमी आया मेरे पास कि तुझे, क्योंकि सुब्रतो भाई उस टाइम पे नेशनल टीम में था
जी, हाँ,
उनके सीनियर टीम में एक ही गोलकीपर था वहाँ पे। तो एक आदमी मेरे पास आया, वो मुझे लेके जाके मुझे बोल रहा है कि तुझे 10-15 दिन सीनियर टीम के साथ, फर्स्ट डे।
हाँ जी।
मैं 11 बजे आके सोया और 2-3 बजे तक वो आया मेरे पास, उसने बोला कि 10-15 दिन सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करनी है,
चलो कैंप,
चलो अपना सामान लेके जहाँ पे सीनियर टीम रुकती है वहाँ पे रुकना है आपको। तो मैं 10-15 दिन सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग किया। उसके बाद गोवा में कैंप ट्रेनिंग का होता है पुणे का,
जब
गोवा में ट्रेनिंग करने के लिए, फिर गोवा से आने के बाद मुझे सीधा सीनियर टीम में ही साइन कर लिया उन्होंने।
हाँ।
क्योंकि पता नहीं कैसे वो मेरे साथ हुआ, पता नहीं ऐसे होता नहीं है कभी भी। मैं फर्स्ट डे आया और मुझे बोल रहे हैं सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करते करते उन्होंने 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे सीनियर टीम में साइन किया।
जब सीनियर टीम में आप साइन हुए थे, करीम बेंचरी का कोच थे?
नहीं, डेरिक परेरा।
डेरिक थे, उसके बाद करीम आए। तो कैसा रहा है आपका पुणे का पूरा एक्सपीरियंस, एक अनुभव कैसा रहा है? सीधे ही आप आते सीधे सीनियर टीम में साइन हो गए थे।
एक मैं भी शौक था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा फोकस रखता हूँ अपना ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग में जो भी है मेरे पास मुझे देना है। डेरिक सर थे वहाँ पे उस टाइम पे, डेरिक सर ने भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे, कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर दिखाया। जब फेडरेशन कप में पॉल बॉय को लगा, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि मैं अभी बेंच पे थर्ड गोलकीपर हूँ। तो जब पॉल बॉय को लगा, उन्होंने पता नहीं, मैं खड़ा हुआ अपना कॉन्फिडेंस से, तो दोनों गोलकीपर हम खड़े हुए, उन्होंने मेरा नाम ले दिया कि तुझे खेलना है। तो वो मेरा फर्स्ट डेब्यू था वहाँ पे, अगेंस्ट ईस्ट बंगाल आई थिंक।
हाँ जी।
तो फेडरेशन कप में कलकत्ता में।
और वो मैच आपको आज भी याद है?
आज भी याद है मुझे।
कैसा रहा था वो अनुभव, कैसा था वो पहला मैच, एक सीनियर टीम डेब्यू आपका?
सीनियर टीम डेब्यू और अगेंस्ट ईस्ट बंगाल कलकत्ता में, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था। जब मैं, मुझे एक छोटी सी बात याद है, जब मैं उस टाइम पे हरमनजोत खाबड़ा कलकत्ता ईस्ट बंगाल में था, तो जब मैं अंदर आया, तो उसने मुझे एक छोटी सी बात बोली थी कि ज़्यादा बाहर मत देखना, अपनी गेम के ऊपर फोकस करना। मैंने जाके वो ही किया अंदर की, कोई कुछ नहीं देखा,
कुछ
एक दो सेव हुए अच्छे, और उसके बाद नेक्स्ट गेम मेरा मोहम्मदन के साथ था, वो 0-0 ड्रॉ हुआ था हमारा।
सो फेडरेशन कप, उसके बाद आई लीग, वो एक सीजन कैसा रहा है, और क्या आप संतुष्ट थे आपके फर्स्ट सीजन पुणे एफसी के साथ?
एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरा फर्स्ट सीजन था पुणे के साथ, और मुझे फर्स्ट सीजन ही चार पांच मैच मिले थे खेलने के लिए। मैं उसमें बहुत खुश था कि फर्स्ट सीजन आके ही मुझे इतने मैचेस मिले हैं, और मैं अपना हार्डवर्क करते गया, सेकंड सीजन भी मुझे 4-5 मैच मिले खेलने के लिए, और थर्ड सीजन से मैंने स्टार्ट कर दिया था फिर खेलने के लिए प्रॉपर। तो थर्ड फोर्थ सीजन वहाँ पर खेला, और उसके बाद फिर पुणे।
ये आपकी बात रही पुणे टीम के साथ, पुणे एफसी टीम के साथ, पर पुणे में रहना, घर से बाहर रहना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है सभी को, आपने कैसे मैनेज किया?
जब मैं निकला था घर से पंजाब से ट्रायल देने के लिए, तो मेरे मॉम डैड का बहुत सपोर्ट था मुझे, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। क्योंकि जब मॉम डैड इतनी बात बोलते हैं, तो प्लेयर हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही हाई हो जाता है कि हाँ, मेरे साथ घर वाले हैं, कुछ भी हो आगे जाके, मैं सिलेक्ट होता हूँ नहीं होता हूँ, मैं अपना जाके बेस्ट दूंगा, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। तो आई थिंक यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही।
पर उनसे दूर रहना मुश्किल हुआ होगा आपको?
मुश्किल तो अभी सबको होता है कि जब फैमिली
तो आदत हो गई है, पर वो पहले बार जब आप बाहर गए थे
फैमिली को छोड़ के जाना और ऐसे बाहर रहना अकेले, कुछ पता नहीं है कोई सिटी में कि क्या क्या चल रहा है, कोई
काफी नया माहौल है,
नया माहौल है, थोड़ा मुश्किल होता है पहले, बाद में धीरे धीरे जब टीममेट्स आते हैं उनके साथ फिर माहौल अच्छा बन जाता है,
फिर आदत हो जाती है,
आदत हो जाती है। फिर
पुणे, उसके बाद आप बैंगलोर गए, एक बेस्ट टीम इन द कंट्री पुणे एफसी, एक बेस्ट सेटअप कहा जाता है, वहां से दूसरे एक बेस्ट सेटअप बैंगलोर, वो एक अनुभव कैसा रहा? प्रदर्शन तो आपका काफी अच्छा था, एएफसी का फाइनल आप खेल नहीं पाए, पर सेमीफाइनल तक थे आप, फाइनल के लिए आप सस्पेंड हुए थे, पूरा एक अनुभव कैसा रहा था बैंगलोर का?
बैंगलोर में बहुत ही अच्छा मेरा लाइक दो साल थे, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरी बैंगलोर में, फैंस के साथ, टीम के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, मैंने अपना दो साल बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, फुटबॉल के साथ भी और पूरी टीम के साथ पूरा इन्जॉय किया मैंने, तो आई थिंक मेरे बहुत ही अच्छे दो साल गए वहाँ पे, तो मैंने अपना बहुत कुछ सीखा बैंगलोर से, जो भी कोच था, मैं जितना भी ट्राई करता हूँ कि जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ जो भी है।
क्या वो एएफसी का फाइनल मिस करना आज भी खनकती है आपको?
आई थिंक मेरी लाइफ का वो सबसे बड़ा शॉक मोमेंट है जब मुझे पता चला कि लाइक पहले एक रूल्स था कुछ, पता नहीं किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ हुआ था कि अगर येलो कार्ड होता है तो आप लोग फाइनल में कुछ मिस नहीं है, आप खेल सकते हो, और मैंने कुछ किया भी नहीं था वो येलो कार्ड के लिए, मैंने बॉल पकड़ा एक और एक आदमी आके मेरे में प्लेयर्स आके लगा और मैं नीचे गिरा और मैं नीचे उठ के और रेफरी को लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ,
टाइम वेस्टिंग के लिए आपको येलो दिया,
मुझे येलो कार्ड दे दिया क्योंकि मैंने आई थिंक 10 सेकंड भी नीचे नहीं रुका, ना तो बाहर से फिजियो आया ना मैं सीधा खड़ा हो गया। जब मुझे नेक्स्ट आफ्टर टू पता चला कि मैं अभी फाइनल नहीं खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अभी तक लाइक शॉक मोमेंट थी कि ये कैसे हो सकता है, कि क्यों नहीं हो सकता।
पर आप थे वहाँ दोहा में, टीम को खेलते हुए देखा, कैसा लगा आपको प्रदर्शन? स्टैंड से देखना कभी कोई प्लेयर चाहता नहीं है।
मैं अंदर ही अंदर बहुत दुख में था कि मैं बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैं शो नहीं कर रहा था, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था कि सब किसी को ऐसा ना लगे कि मैं टीम के साथ नहीं हूँ, मैं सबको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था कि मैच को बाहर से देखना, इतने बड़े मैच को, क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक खेला है तो फाइनल मिस करना बहुत बड़ी बात है।
पर वहाँ भी ये 1-0 हारे थे बेंगलुरु, पूरी टीम निराश थी, पर उस एक माहौल से बाहर कैसे निकली?
उसके बाद कोच ने फिर एक ही बात बोली थी कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हमने अच्छा किया, अभी आगे जाके अगर हम यही अपने दिमाग पे सोच रखेंगे कि हम हार गए हैं या कुछ भी, आगे जाके हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर और भी मैचेस थे यहाँ पे, आई थिंक उसके बाद आई लीग भी चल रहा था और उसके ऊपर भी फोकस था, तो कोच ने जल्दी उसको लाइक रिफ्रेश किया हमें वहाँ से कि आगे फोकस करना है, कुछ नहीं होता ऐसे।
एएफसी कप के बाद सीधे आईएसएल आए, पर उसकी बात नहीं करेंगे, पर आपके बारे में जिंदगी कितनी कुछ बदली है आपकी जब से आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बने हो इंडिया में?
आई थिंक मेरे लिए अभी मेरी जिंदगी पूरी जो फुटबॉल ने ही बदली है, वो फुटबॉल ही है जिसकी वजह से अभी मुझे इंडिया में कोई जानता है, तो बस मेरे लिए यही है कि फुटबॉल है सब कुछ, नहीं अगर नहीं फुटबॉल में नहीं खेलता तो आई थिंक मैं भी अपने कहीं गांव में कुछ ना
करता, बच्चा सा अमरेंद्र अगर फुटबॉल के साथ नहीं खेलता आज कुछ अलग ही होता,
आज कुछ नहीं कर पाता शायद, गांव में अपने खेती बाड़ी का काम कर रहा था मैं।
बैक होम कितना कुछ बदला है और माँ बाप कितने खुश है आपके इस प्रदर्शन से और आपका करियर जिस तरह आपका करियर गया है?
मैं बहुत ही ये अच्छा महसूस करता हूँ कि जब मैं अपने मॉम डैड को अपने साथ देखता हूँ, कि जैसे अभी मैं उनको अपने साथ देखता हूँ कोई भी चीज़ की, उस टाइम पे जब मुझे मेरे पास कुछ नहीं था तो उस टाइम पे जब मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया है, तो आज आई थिंक वो भी बहुत खुश हैं कि मैंने अपना हार्डवर्क करके उनके लिए सब कुछ दिया है उनको, कि मेरा भी एक उनको एक खुशी है कि उनके बेटे को भी जानते हैं
लोग,
क्योंकि मॉम डैड के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि पैसा कमाना ये सब नहीं होता, उनको एक होता है कि इसको अभी सब बाहर इसका नाम है ये ऐसे, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है। अभी
आप काफी यंग हो, 24 साल के ही हो, पर देश के टॉप गोलकीपर में माने जाते हो, आपने सोचा था कभी आप, जब आपके वो कोच आपको कहा था स्ट्राइकर बनना छोड़ो गोलकीपर बनो, आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है?
उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बस खेलना है, मुझे बाहर नहीं बैठना है, कुछ भी हो मुझे बाहर नहीं बैठना है। तो जब मैंने फॉलो फिर उसके बाद गोलकीपिंग मैं ट्रेनिंग करते रहा फिर मेरे दिमाग में एक ही लाइक मैं एक छोटे एम लेके चलता था कि मुझे पहले ये करना है उसके बाद ये करना है उसके बाद ये करना है, उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही था कि मुझे आई लीग में खेलना है जाके, कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके मुझे आई लीग में खेलना है। मैं लकी था कि मैं जब 18 साल का 18-19 के बीच में था तो मैं आई लीग में प्रोफेशनल में आ गया था।
जी हाँ, आज अब आप खुद के बारे में सोचते हो वन ऑफ द टॉप गोलकीपर्स इन द कंट्री, कैसा महसूस होता है? सोचते हो कभी ऐसा?
मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं वन ऑफ द टॉप गोलकीपर हूँ। मैं अपना फोकस रखता हूँ ट्रेनिंग के ऊपर हमेशा कि बस, कभी कि ऐसा अगर मैं सोचूंगा तो मेरा, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से फोकस जाएगा। मैं हमेशा अपना फोकस रखता हूँ कि ट्रेनिंग में अपना 110% दूँ, उसके बाद जो होगा वो मुझे मिल जाएगा मेरा है।
ठीक है, वो रहा बात, पर इंडियन टीम की बात करें, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण साल है देश के लिए क्योंकि 2019 जनवरी में एशियन कप होने वाला है। सुनील भाई ने कुछ ही हफ्ते पहले इंटरव्यू में कहा था कि पर्सनली हर एक प्लेयर अपना प्रिपरेशन अभी से चालू कर देना चाहिए, ना कि टीम के कैंप के लिए रुके। तो आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है?
क्योंकि अभी ये भी हमारा एक प्रिपरेशन है कि हम अपना ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, अपने फूड पे ध्यान दे रहे हैं, जो कैसे खाना है अभी, लाइक अभी उसके बारे में हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है और गेम्स के लिए रेडी रखना है। जो भी जब कैंप होगा उसके बाद जो भी कोच के प्लान होंगे उसके हिसाब से वो कोच अपने आप को रेडी करेगा। तो हम लोग अभी अपने आप को रेडी रख रहे हैं कि अच्छा फूड खाएं, अच्छा अच्छे से ट्रेनिंग करें।
ट्रेनिंग, मैच फिटनेस, ये अभी काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इन सीज़न चल रहा है, ISL का सीज़न चल रहा है, पर अप्रैल मई के बाद मैचेस नहीं रहेंगे, तो मैच फिटनेस रखना कितना और महत्वपूर्ण रहने वाला हर प्लेयर के लिए?
वो टाइम पे प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि मैच फिटनेस नहीं रहती क्योंकि मैचेस नहीं होते हमारे पास उस टाइम पे खेलने के लिए। फिर भी हमें एक अपनी बॉडी को एक शेप में रखना होता है कि अगर हम फुटबॉल मैचेस नहीं मिल रहे तो आज मैचेस नहीं मिल रहे तो हमारी बॉडी एक फिट रहनी चाहिए। और वापस फुटबॉल में आके हमें ये नहीं होना चाहिए कि पहले हमें फिट होना है फिर मैच फिटनेस में आना है, और हमें एक बॉडी को फिट रखना चाहिए और सीधा जाके जब सीजन स्टार्ट होता है तो ट्रेनिंग करके मैच फिटनेस में सीधा जाना चाहिए।
जी अमरिंदर, काफ़ी शुक्रिया इस एपिसोड में आने के लिए, इतना ही सवाल और सवाल नहीं है मेरे पास। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला सीज़न ये साल काफ़ी उमदा रहे।
दोस्तों, तो वो थे अमरिंदर सिंह जिन्होंने उनकी कहानी हमारे साथ शेयर की। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप आपकी राय और आपकी कमेंट्स हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर ट्विटर और फेसबुक पर उपलब्ध है। ट्विटर पर हमारे हैंडल का नाम है @injurytimeind और फेसबुक पर हमारा पेज है injurytime। तो अब मैं लेता हूँ अलविदा, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ हम लौटेंगे बहुत ही जल्द।